अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक किताबों में से एक के बिल्कुल शुरुआती पन्नों पर ही एक बहुत बड़ी गलती है, तो आप क्या कहेंगे? मतलब सोचिए, लेखक अपनी किताब की शुरुआत में कहता है कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन भविष्यवक्ता यशाया यानी आइज़ाया का कोट दे रहा है,
राइट।
लेकिन असल में जो लाइन वो लिखता है वो यशाया की है ही नहीं, वो तो किसी और ही किताब मालासी से ली गई है। तो क्या उस लेखक की याददाश्त कमजोर थी, या उसे कोई भारी भूल हो गई थी, या फिर क्या इसके पीछे कोई ऐसा गुप्त कोड या गहरा नेटवर्क काम कर रहा है जिसे हम आधुनिक युग के लोग पूरी तरह से मिस कर रहे हैं?
ये वाकई एक बहुत ही शानदार सवाल है। और देखिए, ज्यादातर लोग जब किसी भी एंशियंट टेक्स्ट या धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं ना, तो वो बस पन्ने पलटते हैं, एक सीधी सपाट कहानी की तरह पढ़ने लगते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन आज हम जिस विषय की तह तक जागे मले हैं, वो हमें दिखाएगा कि इन एंशियंट लेखकों के दिमाग असल में कैसे काम करते थे।
सही कहा। तो आज हमारे इस गहरी चर्चा का जो स्रोत है वो डॉक्टर मैथ्यू एस हार्मन का एक बहुत ही दिलचस्प लेक्चर है, जिसका टाइटल है द बाइबल्स यूज ऑफ द बाइबल सेशन 2 द वैल्यू ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्सचुअल नेटवर्क्स। और हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि प्राचीन ग्रंथ, खास तौर पर बाइबल जैसे टेक्स्ट, आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेक्स्ट्स हवा में नहीं लिखे गए थे।
चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर हार्मन कहते हैं कि जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। अब उन भारी भरकम एकेडमिक शब्दों में उलझने की बजाय क्या हम इसको थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं?
कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक खुली हुई किताब रखी है।
ठीक है, मैंने कल्पना कर ली।
तो हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट का सीधा सा मतलब है कि जो पन्ना आप अभी पढ़ रहे हैं उसकी ठीक अगल बगल क्या चल रहा है, मतलब जिस वाक्य पर आपकी उंगली है उसके ठीक पहले वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है।
ओ, अच्छा।
या उस पूरे चैप्टर में क्या कहानी चल रही है, या उस पूरी किताब का मुख्य विषय क्या है, ये सब कुछ एक क्षितिज या हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, उसी समय और उसी कहानी के अंदर। इसको आप लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं।
मतलब अगर मैं कोई रहस्यमय नॉवल पढ़ रही हूँ तो हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट मुझे ये बताएगा कि उस कमरे में और कौन कौन मौजूद था जब हत्या हुई, राइट?
एकदम सही एग्जाम्पल दिया आपने। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब हम वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। इसे एक लंबवत या ऊपर से नीचे जाती हुई रेखा की तरह सोचिए, जो समय को चीरते हुए निकलती है।
समय को चीरते हुए मतलब पास्ट और फ्यूचर के बीच में?
हाँ, देखिए, जब कोई नया लेखक किसी बहुत पुरानी किताब का संदर्भ देता है तो वो केवल एक किताब के पन्नों तक सीमित नहीं रहता, वो सदियों के इतिहास को, पुरानी घटनाओं को और पुराने वादों को एक साथ जोड़ रहा होता है।
अच्छा।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, रिडेम्प्टिव हिस्ट्री में या ऐतिहासिक मोक्ष में, नए टेक्स्ट पुराने टेक्स्ट के ऊपर रखे जाते हैं और वो आपस में इशारे या अल्यूजन्स करते हैं।
ये वाकई बहुत पावरफुल आइडिया है, और डॉक्टर हार्मन ने अपने लेक्चर में इसके लिए एक कमाल की एनालॉजी यूज की है, स्नोबॉल वाली एनालॉजी, जो मुझे लगता है कि इस पूरे वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट को एकदम क्लियर कर देती है।
हाँ, वो स्नोबॉल वाला एग्जाम्पल सच में बहुत सटीक है
ना? जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ की चोटी से एक छोटा सा बर्फ का गोला नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू करता है। अब जैसे जैसे वो नीचे आता है, वो सिर्फ अपनी जगह नहीं बदल रहा होता, वो रास्ते की और भी बर्फ को अपने साथ लपेटता जाता है।
बिल्कुल। और जब वो नीचे पहुंचता है तो वो काफी विशाल हो चुका होता है।
एग्जैक्टली। और वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब एक नया लेखक किसी पुरानी कहानी का हवाला देता है तो वो सिर्फ पुराने टेक्स्ट की नकल नहीं कर रहा होता, वो उस पुराने बर्फ के गोले में अपने समय का, अपनी नई कहानी का मीनिंग या अर्थ जोड़ देता है।
सही बात है, वो मीनिंग लगातार इकट्ठा होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है।
और इसीलिए सुनने वालों को इस विषय की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जानकारी का आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हम सिर्फ आखिरी बर्फ के गोले को देखकर सोचें कि हमें सब समझ आ गया, तो हम पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे तक की उस पूरी यात्रा को तो मिस ही कर देंगे ना।
बिल्कुल, और यही चर्चा हमें सिखाएगी कि किसी भी इन्फॉर्मेशन की गहराई में असल में कैसे उतरा जाए।
लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है यहाँ पर। ये स्नोबॉल वाली एनालॉजी और थियरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या पुराने लेखकों ने सच में इतनी गहराई से सोच समझ कर लिखा था?
आपको लगता है कि शायद मॉडर्न स्कॉलर्स ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं?
हाँ, मतलब क्या ये सच में इंटेंशनल था? क्या हमारे पास कोई ठोस उदाहरण है जो साबित करे कि हाँ उन्होंने जानबूझकर ये नेटवर्क बनाया था?
ये बहुत ही जायज सवाल है, और इसे साबित करने के लिए चलिए हम पुराने नियम या ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ चलते हैं। एक बहुत महान राजा थे, सोलोमन या सुलेमान।
हाँ, सोलोमन को तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजाओं में से एक माना जाता है ना।
सही कहा, लेकिन उनका एक भारी पतन भी हुआ था। अगर हम फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11 की शुरुआती आयतों को देखें, वर्सेस 1-4 को, तो वहां जो फैक्चुअल डिटेल्स मिलती हैं वो हैरान करने वाली हैं। टेक्स्ट कहता है कि सोलोमन ने 700 पत्नियां और 300 रखेलों से शादी की थी।
ओह माय गॉड, 1000 औरतें, ये तो सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है।
बिल्कुल, लेकिन टेक्स्ट में एक और खास डिटेल दी गई है। वो बताता है कि ये औरतें दूसरे जातियों से थीं, जैसे इडोमाइट, सिडोनियन और हिटाइट, और इसका नतीजा ये हुआ कि सोलोमन का दिल अपने भगवान से भटक गया और उसने दूसरे भगवानों की पूजा शुरू कर दी,
जो कि उनके पिता दाऊद या डेविड के कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत था।
एकदम सही। अब देखिए, बहुत से लोग इस टेक्स्ट को पढ़कर यही सोचते हैं कि बस एक हिस्टोरिकल फैक्ट है।
हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मतलब एंशिएंट टाइम्स में राजाओं के लिए ऐसी शादियां करना तो बड़ा आम था ना, पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए वो दूसरी राजकुमारियों से शादी करते थे।
सही पॉइंट है, अगर हम सिर्फ सतह पर देखें तो आपका तर्क सही लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंस लगाना होगा। पहले हॉरिजॉन्टल को देखते हैं। फर्स्ट किंग्स 11 की ये कहानी कोई अलग थलग कहानी नहीं है।
अच्छा,
ये फर्स्ट किंग्स 1-11 तक चलने वाले सोलोमन के पूरे शासन का हिस्सा है। और थोड़ा और हॉरिजॉन्टल जाएं तो ये बुक ऑफ किंग्स और जोशुआ, जजेस और सैमुअल के बड़े ऐतिहासिक नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है।
मतलब वो अपने आसपास की लिटरेरी हिस्ट्री से पूरी तरह जुड़ा हुआ है।
हाँ, लेकिन असली जादू वर्टिकल यानी उस वेब या जाले में, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। सोलोमन की ये गलती एक कोई मामूली गलती नहीं थी। ये टेक्स्ट सच में कई पुराने कानूनी टेक्स्ट पर आधारित है।
वाकई? कैसे? मतलब कौन से पुराने टेक्स्ट?
जैसे ड्यूटरोनॉमी या व्यवस्था विवरण चैप्टर 7 की वर्सेस 3-4 को ले लीजिए। वहां बहुत ही स्पेसिफिकली इन फॉरेन नेशंस या बाहरी जातियों से शादी करने को मना किया गया था, और वहां रीजन भी दिया था कि ये फॉरेन लोग तुम्हारे दिलों को तुम्हारे भगवान से दूर कर देंगे।
एक सेकेंड, फर्स्ट किंग्स में भी तो यही वर्ड्स थे ना, कि उसका दिल भगवान से दूर हो गया।
एग्जैक्टली, लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती। ड्यूटरोनॉमी 17 में राजाओं के लिए एक और खास नियम था। उसमें साफ लिखा था कि राजाओं को बहुत ज्यादा पत्नियां नहीं रखनी चाहिए,
क्योंकि फिर से वही बात है, उनका दिल भटक जाएगा।
और गेस कीजिए, सोलोमन की पत्नियों में कौन थी?
एमोनाइट्स और मोआबाइट्स। तो इस सब का मतलब क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी के ऊपर लीगल चार्जेस लगा रहा हो।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई साधारण बायोग्राफी नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड लीगल इंडाइटमेंट है, एक आपस में जुड़ी हुई कानूनी आरोप पत्र। लेखक बेसिकली कह रहा है कि इस बुद्धिमान राजा ने ड्यूटरोनॉमी 7 तोड़े, 17 तोड़े और 23 भी तोड़ दी।
ओ वाओ, मतलब सोलोमन को ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिर भी सब इग्नोर कर दिया।
बिल्कुल, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बाद में नहमिया 13 में भी बिल्कुल इसी वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है, जब लोग फिर से एमन और मोआब की औरतों से शादी कर रहे थे।
तो नहमाया ने भी इसी टेक्स्ट का हवाला दिया।
हाँ, उन्होंने कहा कि देखो सोलोमन के साथ क्या हुआ था, कैसे ये टेक्स्ट एक वेब बना रहे हैं, ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है।
ये तो वाकई माइंड ब्लोइंग है। अगर पुराने टेक्स्ट्स आपस में इस तरह का वेब बनाते हैं तो क्या होता है जब कोई नया लेखक किसी पुराने टेक्स्ट का हवाला देता है?
ये एक बहुत बढ़िया ट्रांजिशन है।
हाँ, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो जाए, जैसा कि हमने एपिसोड इस गहरी चर्चा के शुरू में बात की थी मार्क 1-2-3 वाले एग्जांपल के बारे में, वहाँ तो लगता है जैसे मार्क से बहुत बड़ी भूल हो गई थी।
हाँ, सतह से देखने पर तो आम पाठक को ऐसा ही लगेगा। मार्क लिखता है, जैसा कि भविष्यवक्ता आयजाया की पुस्तक में लिखा है, मैं अपने दूत को भेजूंगा जो तुम्हारा रास्ता तैयार करेगा।
लेकिन जैसे कि हमने शुरू में रिवील किया था कि ये लाइन तो आयजाया की है ही नहीं, ये तो मैलाकाई 3.1 से आती है। आयजाया 40.3 तो इसके ठीक अगले सेंटेंस में आता है। तो सीरियसली, क्या मार्क को अपनी किताबें याद नहीं थी?
देखिए, पहली बार में कोई भी यही सोचेगा, पर वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट का लेंस लगाते ही तस्वीर एकदम बदल जाती है। एक्सपर्ट स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर हामन मानते हैं कि ये कोई गलती नहीं है।
तो फिर ये क्या था?
मार्क तो बहुत अच्छे से पता था कि मैलाकाई 3.1 असल में पहले से ही आयजाया 40.3 का हवाला दे रहा था।
अच्छा, तो मैलाकाई ने पहले से ही आयजाया को कोट किया हुआ था।
हाँ, और रुकिए, स्टोरी और गहराई में जाती है। आयजाया 40 खुद एक्सोडस 23 को कोट कर रहा था, जिसे हम हिंदी में निर्गमन कहते हैं।
हेट, क्या 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 मतलब, एक के अंदर एक, ये चेन बनी कैसे? जरा इसे समझाएंगे आप?
जरूर। देखिए, एक्सोडस 23 में ईश्वर एक दूत भेजकर रास्ता सुरक्षित करने की बात करता है। वहां उस ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में वो एक फरिश्ता था, एक एंजेलिक बीइंग।
ठीक है, समझ गई।
लेकिन जब आयजाया और मालाकी का समय आया तो उन्होंने इसी एक्सोडस की भाषा का इस्तेमाल किया, पर अब वो एंजेलिक बीइंग एक मनुष्य या ह्यूमन मैसेंजर बन चुका था। मार्क बस इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ रहा था।
ओ अच्छा, मतलब उसने कोई लाइन मिक्सअप नहीं की, बल्कि उसने जानबूझकर उन तीनों को एक ही पैकेज में प्रेजेंट किया।
एकदम सही। और यहां एक और कमाल की चीज होती है, जब ये वर्टिकल कनेक्शन बनता है ना, तो हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है।
हॉरिजॉन्टल एक्टिवेट हो जाता है, वो कैसे?
देखिए, मार्क गॉस्पल या इवेंजेलियन शब्द का यूज करता है अपनी किताब की शुरुआत में,
जी,
जिसका मतलब है गुड न्यूज। ये शब्द कहां से आया? अगर आप आयजाया 40 का हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट पढ़ें तो वर्स 9 में हेरल्ड ऑफ गुड न्यूज यानी शुभ समाचार सुनाने वाले का जिक्र है।
ओ, तो उसने वहां से उस स्पेसिफिक वर्ड को उठाया।
बिल्कुल। और थोड़ा और आगे बढ़े, मार्क जॉन द बैप्टिस्ट या योहन्ना को इलाइजा के रूप में दर्शाता है। उनके कपड़े, उनका स्टाइल सब इलाइजा जैसा था। और ये कहां लिखा है?
कहां लिखा है?
ये मलाकी 4.5 में मिलता है, जो कि उसी पैसेज का हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट है। और मार्क जिस प्रभु की उपस्थिति या प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड की बात करता है, वो सीधा एक्सोडस 33 के हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा है।
और यहां पर बात सच में बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुझे एक एनालॉजी समझ में आ रही है इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए।
मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा।
जैसे जब हम इंटरनेट पर कुछ डाउनलोड करते हैं, ये ऐसा है जैसे लेखक ने सिर्फ एक टेक्स्ट की लाइन को चेरी पिक नहीं किया कि बस लाइन काटी और चिपका दी, बल्कि उसने पूरा का पूरा फोल्डर डाउनलोड कर लिया।
फोल्डर डाउनलोड, ये बहुत ही ब्रिलियंट एनालॉजी है,
है ना? मतलब जब उसने वो फोल्डर उठाया तो उसमें उस टेक्स्ट के आसपास के सारे फाइल्स, उसका पूरा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट सब अपने आप डाउनलोड हो गया और टेक्स्ट में आ गया।
सही कहा आपने। और इस फोल्डर डाउनलोड करने वाली बात को हम थोड़ा और बड़े पैमाने पर भी ले जा सकते हैं।
अच्छा, वो कैसे?
इस प्रोसेस के फाइनल और सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल को डॉक्टर हार्मन टेक्सचुअल नेटवर्क्स कहते हैं।
टेक्सचुअल नेटवर्क्स मतलब जहां बहुत सारे फोल्डर्स और वेब आपस में जुड़ जाते हैं।
बिल्कुल। इसे बेसिस बनाने के लिए हम दाविदिक कवनेंट या दाऊद के वचन का उदाहरण ले सकते हैं, जो 2 सैमुअल 7 में है।
राइट, जहां ईश्वर डेविड को वचन देता है कि उसके वंश से एक अनंत राजा आएगा और उसका राज्य हमेशा रहेगा।
सही। अब ये वादा हवा में से नहीं आया था, इस टेक्सचुअल नेटवर्क का एक प्रीकर्सर था, एक पीछे का कनेक्शन। अगर आप जेनेसिस या उत्पत्ति 49.10 में जाएं, जहां सेप्टर या राजदंड की बात होती है।
हाँ, कि वो जूदा या यहूदा से नहीं जाएगा और लोग उसकी आज्ञा मानेंगे।
एग्जैक्टली। और देखिए, डेविड खुद यूदा के कबीले से था, तो 2 सैमुएल का ये वादा जेनेसिस 49 का ही आगे का हिस्सा है। ये हुआ पीछे का कनेक्शन।
और इसके आगे के कनेक्शन क्या थे?
इन्हें हम रिसेप्टर्स कह सकते हैं, जैसे साम या भजन संहिता चैप्टर 2, जो इसको और एक्सपैंड करता है। इसमें जेनेसिस 49 का ओबीडियंस ऑफ नेशंस और 2 सैमुएल का सनशिप यानी पुत्र होने का कॉन्सेप्ट दोनों जुड़ जाते हैं।
ओह वाओ।
और उसके बाद साम 89 आता है, जो इसमें फर्स्ट बॉर्न या पहलौठा और हाईएस्ट ऑफ किंग्स का आइडिया जोड़ देता है।
इंटरनेट के हाइपरलिंक्स जैसा है।
हाइपरलिंक्स?
हाँ, मतलब देखिए, जब हम कोई विकिपीडिया पेज पढ़ते हैं, अगर आप उस नीले लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप 90% मीनिंग मिस कर देंगे। वहाँ उस टेक्स्ट के पीछे पूरा का पूरा नया आर्टिकल छुपा होता है।
हाँ।
लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सब का न्यू टेस्टामेंट या नए नियम से क्या रिलेशन है?
देखिए, आपकी हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट वाली बात बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब न्यू टेस्टामेंट में यीशु या जीसस का बैप्टिज्म होता है और आसमान से आवाज आती है, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो।
हाँ, यू आर माई बिलव्ड सन।
तो ये बस एक मीठी बात या स्वीट कॉम्प्लीमेंट नहीं थी, ये सेंटेंस सीधा इस पूरे डिविडिक कवनेंट वाले हाइपरलिंक्ड नेटवर्क को एक साथ क्लिक कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था।
मतलब आसमान से आई उस एक आवाज ने जेनेसिस, सैमुअल और सारे साम्स का पूरा फोल्डर एक साथ खोल दिया लोगों के दिमाग में।
बिल्कुल। एक स्कॉलर हैं, गैरी श्निट्जर, उन्होंने एक किताब लिखी है, द ओल्ड टेस्टामेंट यूज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। वो इन नेटवर्क्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं कि कैसे ये वर्ड्स उस एंशिएंट ऑडियंस के दिमाग को तुरंत क्लिक कर जाते थे।
That is just incredible.
अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो अर्थ या मीनिंग किसी एक अकेले वर्स में नहीं बनता, बल्कि टेक्स्ट्स के आपस में जुड़ने और उनके अक्यूमुलेट होने यानी इकट्ठा होने में बनता है।
सही में, इस चर्चा ने तो मेरी पूरे टेक्स्ट्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए, हम अपने सुनने वालों के लिए इस पूरे गहन अध्ययन के मेन पॉइंट्स को समेट लेते हैं।
जरूर।
नंबर एक, हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक लाइन उठाकर उसको ठीक मत मान लीजिए, उस ओरिजिनल डोनर टेक्स्ट के आसपास का हिस्सा भी पढ़िए।
नंबर दो, मीनिंग के अक्यूमुलेशन पर ध्यान दीजिए। अर्थ हमेशा बर्फ के गोले की तरह इकट्ठा होता है और टाइम के साथ उसमें और भी नई लेयर्स जुड़ती जाती हैं।
और नंबर तीन, टेक्स्चुअल नेटवर्क्स को समझें। लेखक कोई चेरी पिकिंग नहीं करते थे कि कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। वो बहुत ही डीप कंटेक्स्चुअल अजम्पशंस के साथ और पूरे फोल्डर को दिमाग में रखकर लिखते थे।
बिल्कुल ठीक कहा आपने।
अब सुनने वालों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये सब ठीक है, पर आज की दुनिया में इसका क्या रिलेवेंस है, हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? तो देखिए, आज हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में जी रहे हैं। हमारे चारों तरफ छोटे छोटे साउंड बाइट्स हैं, रील्स हैं।
और ऐसी सिचुएशन में बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी बात को समझना बहुत आसान हो गया है, लेकिन उतना ही गलत भी।
सही बात है। टेक्स्ट या किसी भी न्यूज़ जानकारी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्शंस को समझना ही तो सच्ची क्रिटिकल थिंकिंग है। ये ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये वो डीप डाइव है जो हमें सच्चाई तक ले जाता है।
एकदम सही मैसेज है।
तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, छोड़ के जाते जाते मैं आपके दिमाग में एक आखिरी सोच विचार करने वाला सवाल डालना चाहती हूँ। अगर हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथ बिना इंटरनेट के एक ऐसी इंटरकनेक्टेड हाइपर लिंक्ड वेब की तरह डिजाइन किए गए थे, तो आज की ऐसी कितनी ऐतिहासिक बातें या मॉडर्न आइडियाज हैं जिन्हें हम गलत समझ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके पीछे छुपे वर्टिकल लिंक्स को देखने की कोशिश ही नहीं करते।